अगर कोई भगवत क्लास में नहीं आ रहा, कोई शिक्षा नहीं ले रहा, तो क्या उसकी मदद करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मदद करनी चाहिए, है ना। दो तरह के धर्म होते हैं, एक साधारण परिस्थिति का धर्म होता है, एक आपात धर्म होता है। आपात धर्म में साधारण परिस्थिति के धर्म नहीं चलते, है ना। जीवन रक्षा के लिए अगर मांस भी खाना पड़े तो खा लेना चाहिए, क्योंकि आपात धर्म है वो, है ना। लेकिन साधारण सब अवेलेबल है चीजें, फिर भी जाके हम मांस इत्यादि खाएं, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर जीवन रक्षा करनी है, क्योंकि ये शरीर है तो सेवा करोगे नहीं। इसी तरह से साधारण परिस्थिति में अलग बात चलती है, लेकिन आपको लग रहा है कोई व्यक्ति परेशानी में है, भूखा है, बहुत दिक्कत में है, उसको प्रसाद देने में क्या हर्ज है? तो मदद करनी चाहिए। और अनेक उदाहरण है हमारे शास्त्रों में भी कि एक राजा अपनी पुत्री के साथ में एक बार किसी पहाड़ों में घूम रहा था, तो वहाँ पे एक साधु था और ठंड के कारण उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो राजा की पुत्री ने उसकी रक्षा की, उसको बचाया उसको, है ना। सो आपात धर्म अलग चलता है, लेकिन हर जगह हम इसको लगा भी नहीं सकते, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना चाहिए। हमें भक्त बनने का मतलब कोमल हृदय होता है, भक्त बनने का मतलब पाषाण हृदय नहीं होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुनाचार्य, उसने ये श्लोक पढ़ा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। सो जब उसने पढ़ा वहामि, तो उसको लगा भगवान खुद थोड़े ना आएंगे वहन करने के लिए सामान, भक्त की जरूरत पूरी करने के लिए खुद नहीं आएंगे। तो वहामी पे काटा लगा के भिक्षा मांगने गया, मधुकरी करने गया, कुछ कहीं से मिला नहीं उसको। तो जब वो भटक रहा था, घर घर जा रहा था मधुकरी करने के लिए, पीछे उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी, उसके पास 2 लड़के आए और उन्होंने अपने कंधे में सामान उठा रखा था, घी, चावल, दाल, हाँ, मसाले, बनाने के बर्तन, हाँ, बहुत सारा सामान उठा रखा था। तो वो दोनों गए उस ब्राह्मणी के पास, दरवाजा खटखटाया, तो ब्राह्मणी ने बोला आप कौन हो? तो उन्होंने बोला हम जो हैं आपके पति के शिष्य हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कोई शिष्य नहीं है, मुझे सब पता है, तो उनका तो कोई शिष्य है नहीं। बोला नहीं, शिष्य हैं, लेकिन आज जो हमारे जो गुरु हैं, हम पे पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ गया, हमारे को मार मार के लहूलुहान कर दिया। क्या बात कर रहे हो, उनको तो गुस्सा ही नहीं आता। तो एक लड़के ने अपनी चादर हटाई पीठ से, तो पीठ पे कोड़ों के निशान थे। ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया, ऐसा कैसे इतने कोमल बच्चों के साथ कर सकते हैं, चलो आप सामान रख लो, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं आ ना जाए और फिर हमारी पिटाई ना कर दें। तो कह के भाग गए दोनों। अब ब्राह्मणी वेट कर रही है कि कब पतिदेव आएंगे और उनसे मैं पूछूंगी ये क्या कर रहे हो आप। तो ब्राह्मण आया थका मांदा, ब्राह्मण का नाम क्या है? अर्जुनाचार्य, ठीक है। तो जाग रहे हो आप लोग। सो ब्राह्मण आया तो ब्राह्मणी गुस्से में बैठी हुई थी, बोले कि आपने ऐसा कैसे, बच्चों को आपने मारना शुरू कर दिया, मतलब क्या तरीका है, कौन से बच्चे, कौन से शिष्य, कहाँ मारा? बोला आपने सामान भिजवाया था। तो उसको शक हो गया अर्जुनाचार्य को, तो उसने पूछा दिखने में कैसे थे? एक सांवला था, एक गोरा था, ये कपड़े डाले हुए थे। तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, अच्छा कृष्ण बलराम आए थे। भाग के गया, भगवत गीता उठाई और कौन सा श्लोक खोला? नौवें अध्याय का 22वां श्लोक खोला, तो उसमें उसने देखा वहामी शब्द जो काटा हुआ था वो यथा रूप है, वो काट जो शायद थी मिट गई थी वो। तो वो ब्राह्मण को समझ में आया कि जब लिखा हुआ है, जब भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहामी हम, मैं खुद ही बहन करता हूं, तो ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसी बात कह रहे हैं जो कि करेंगे नहीं, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं हर एक भक्त की, स्वयं उसकी जरूरतों का जो है पालन करते हैं, स्वयं उसकी जरूरतें पूरी करते हैं भगवान, है ना। सो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये बताने के लिए कि भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, हर एक श्लोक जो है वो पूरी तरह मतलब सच्चा, उसमें कुछ भी शक की गुंजाइश नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं भगवद गीता में, एक एक शब्द एक एक श्लोक सच्चाई से भरा हुआ है, और भगवान बहुत ही कारुणिक अवस्था में भगवान बोल रहे हैं। कौन्तेया प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र जाके सबको बोल दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सब किसी ना किसी तरह से उनकी शरण लें, ठीक है। तो भगवद गीता पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि ज्ञान की दृष्टि से भगवद गीता को पढ़ना, और दूसरा है सेवा की दृष्टि से भगवद गीता को पढ़ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवद गीता में मैं ही मैं नजर आ रही है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। जैसे भगवान भगवद गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि मैंने सबको मार दिया है, हे अर्जुन मैंने सबको मार दिया है। आप वो श्लोक आप निकाल के देखो, 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, ये 377 पेज नंबर 377 है ना। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व भुङ्क्ष राज्यम स्मृद्धम मय्य वैते निहितः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो कई लोग बोलते हैं कि देखो हर जगह मैं ही मैं चल रहा है, तो क्या भगवान बहुत अहंकारी हैं कि हर जगह मैं ये मैं वो? क्या भगवान बार बार मैं शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद ने पूरी भागवत और पूरी भगवद गीता में कमेंट्री में व्याख्या में कहीं भी आई शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं मैं कुछ है ही नहीं। तो ये कोई कह सकता है कि ये होती है विनम्रता? और कृष्ण को देखो, हर जगह मैं ही मैं बोले जा रहे हैं। तो कृष्ण मैं बोल रहे हैं, ये भगवान की करुणा का प्रतीक है। भगवान एक बहुत ही दयाद्र, बहुत ही आसक्त पिता की तरह, बहुत ही दयालु पिता की तरह اپنے بچے کو بول رہے ہیں کہ کچھ بھی پرابلم ہو میرے پاس آ جانا. جیسے ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں, چھوٹے بچے کو, دو تین سال کا بچہ ہو, بچہ کچھ بھی کھیل رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو ایک دم سے اگر لگتا ہے کہ کہیں پہ غلط جگہ جا رہا ہے یا سپوز سڑک پہ نکل رہا ہے, تو اس کو آواز مارتے ہیں میرے پاس آ جاؤ. تو کیا اس میں اہنکار ہے؟ اس میں اہنکار نہیں ہے, اس میں بہت ہی کرونا ہے, اس میں بہت چنتا بھری ہوئی ہے کہ اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے, سڑک پہ چلے جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو جو ویکتی صرف گیان کی درشٹی سے نالج لینے کے لیے بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, تو وہ ایسا نشکرش نکال سکتے ہیں کہ بھگوان اہنکاری ہیں, کرشنا اہنکاری ہیں. لیکن جو سیوا درشٹی سے پڑھے گا بھگوت گیتا کو, اس کو ہر شلوک میں بھگوان کی کرونا, بھگوان کی چنتا نظر آئے گی. اور ہمیں بھگوت گیتا پڑھتے سمے اس درشٹی سے ہی بھگوت گیتا پڑھنی چاہیے. اگر ہم اس درشٹی سے بھگوت گیتا نہیں پڑھتے, تو ہم کتنی ہی بار پڑھ لیں بھگوت گیتا, ہم کبھی بھی اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے, ہے نا. اسی لیے ایسے بھکتوں کے مکھ سے سننا چاہیے, ایسے بھکتوں کے سنگ مل کے بھگوت گیتا کو پڑھنا چاہیے جن کی بھگوان میں شردھا ہے. اگر ہم کسی ایسے ویکتی سے سنیں گے بھگوت گیتا کو جس کی بھگوان میں شردھا نہیں ہے, تو آپ کی رہی سہی شردھا بھی گھٹ جائے گی, ہے نا. سو بہت ہی دھیان رکھیے, بہت ہی ساودھانی سے, بہت مشکل سے ایسا اوسر ملتا ہے کہ بھگوان کے وچن سننے کو مل جائیں, اور اگر ہم وہ سن کر بھی اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے, تو ہمارے سے بڑا درباگیشالی کون ہوگا, نہیں. سو ہم بھگوت گیتا کے پہلے ادھیائے پہ چرچا شروع کریں گے. سو پہلے ادھیائے پہ چرچا شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو پہلے ادھیائے کا مہاتمیہ بتا دیتے ہیں. اور بھگوت گیتا کا جو مہاتمیہ ہے وہ پدم پران میں ورنت ہے. پدم پران میں شیو جی اور پاروتی جی کے بیچ میں چرچا ہو رہی ہے. تو پاروتی جی نے شیو جی سے پوچھا تھا کہ کرشن بھگوان ہے, تو کرشن کے مکھ سے نکلی, اور کرشن بھگوان ہے تو مطلب اپوروشے ہیں, مطلب بھوتک نہیں ہے, اور کرشن کے مکھ سے نکلا ہوا ہر وچن, ہر شبد, وہ بھی آدھیاتمک ہے, بھوتک نہیں ہے, وہ بھی اپوروشے ہے. تو کرشن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بھگوت گیتا اپاروشے ہے, اس بھوتک جگت سے سمبندھت نہیں ہے. تو اپنی بھوتک اندریوں سے, اپنے بھوتک آنکھ, کان, ناک, منہ, دماغ, من سے ہم کیسے بھگوان کے دیویہ وچنوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. پڑھ لیا, مان لیا, آپ نے شلوک پڑھ لیا, دھرتراشٹر واچا دھرم کھیتر کرو کھیتر سمویدا یوسو, پڑھ سکتے ہیں ہم. سو لیکن یہ اپوروشے ہے, یہ دیویہ ہے. اس میں بھی ایک پرشن آپ پوچھ سکتے ہو کہ جو دھرتراشٹر بول رہا ہے, دھرتراشٹر واچا, وہ دیویہ کیسے ہے؟ نہیں, بھگوان واچا تو دیویہ ہو گیا, لیکن دھرتراشٹر واچا دیویہ کیسے ہو گیا؟ تو پربھوپاد اور ہمارے پوروتی آچاریہ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کاجل کی کوٹھری میں گھس گیا, تو کاجل کی کوٹھری میں گھسیں گے تو آپ پہ لگے گا ہی لگے گا کاجل. آپ کے ایک کاجل کا داغ جو ہے آپ پہ کپڑوں پہ آپ پہ لگے گا ہی لگے گا کتنی بھی ساودھانی برت لو, اس کا سوبھاو ہے. اسی طرح سے بھگوان کے وچنوں کے ساتھ جو چیز سپرش کر رہی ہے وہ اپنے آپ سے دیوی ہو جائے گی, یہ بھگوان کے وچنوں کا بھگوان کا سوبھاو ہے. تو اس لیے حالانکہ دھریتراشٹر واچا ہے پھر بھی یہ شلوک دیوی ہے, ہمیں یہ چیز دھیان رکھنی چاہیے, ہے نا. اوکے, سو ہم مہاتمے کی بات کر رہے تھے کہ جو پہلے ادھیائے کا کیا مہتو ہے. تو شیو جی نے اتر دیا پاروتی کو کہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اپورشے ادھوکشج وستو کو, ہم اپنے بھوتک اندریوں سے کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو شیو جی نے کہا کہ دیکھو بھگوت گیتا بھگوان سے ابھن ہے, بھگوان خود ہی بھگوت گیتا کے روپ میں اوترت ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, بھگوان کا کرپا پاتر بننا. بھگوان کی کرپا ہوگی تو ہم اپنی بھوتک اندریوں سے اس دیویہ وشے کو سمجھ پائیں گے. چاہے ہم میں کچھ بھی بدھی نہیں ہو, چاہے کچھ بھی ہم میں سمجھ نہیں ہو, یادداشت کمزور ہو گئی ہو, پھر بھی بھگوت گیتا سے بھگوت کرپا سے ہم بھگوان کو بھگوت گیتا کو سمجھ سکتے ہیں. اس کا ادھارن ہمیں ملتا ہے چیتنیہ چریتامرت میں, جب چیتنیہ مہاپربھو درشن بھارت کی یاترا میں گئے تھے, ہے نا, تو وہاں پر ان کو ایک براہمن ملا, تو اس نے بھگوت گیتا, یہ بھگوت گیتا ہے, اس نے بھگوت گیتا ہم ایسے پڑھیں گے نا, وہ ایسے پکڑی ہوئی تھی اس نے اور روئی جا رہا تھا, لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے, الٹی بھگوت گیتا پکڑی ہوئی تھی اس نے. الٹی بھگوت گیتا کیسے پڑھ سکتے ہیں, پڑھ ہی نہیں سکتے, نہیں, روئی جا رہا تھا. تو چیتنیہ مہاپربھو نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو, کیا ہو گیا, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ تو اس نے بولا کہ میرے گرو نے بولا ہے روز پوری بھگوت گیتا پڑھنی ہے لیکن میں ان پڑھ ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سیدھی کیسی ہے الٹی کیسی ہے. تو انہوں نے کہا, چیتنیہ مہاپربھو نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے بولا میں بھگوان کی کرونا دیکھ کے رو رہا ہوں کہ آدھیاتمک اور بھوتک دونوں جگت کے مالک ہیں, کروڑوں لکشمیاں بھگوان کی سیوا میں لگی ہوئی ہیں اور وہ بھگوان بھکتی کے وش میں ہو کر ارجن کے سارتھی بنے ہوئے. تو چیتنیہ مہاپربھو نے کہا تم بھگوت گیتا کو سمجھ چکے ہو, تمہیں پڑھنے کی آوشکتا نہیں ہے. اگر تم شلوک اچارن نہیں بھی کر پاؤ تو یہ سمجھ لو تم بھگوت گیتا سمجھ چکے ہو, ہے نا. کیونکہ کوئی ڈاکٹر انجینئر ایسا نہیں ہے کہ سمجھ جائے گا, اور کوئی کارخانے میں کام کرنے والا رکشہ چلانے والا بھگوت گیتا نہیں سمجھ سکتا, ایسا نہیں ہے. ہر وہ ویکتی بھگوت گیتا سمجھ سکتا ہے جس کے ہردے میں بھگوان کے پرتی شردھا ہے. شردھا وہ مادھیم ہے جس کے دوارا بھگوان آپ کو ہمیں بھگوت گیتا سمجھنے کی شکتی پردان کریں گے. اگر شردھا نہیں ہے کتنا ہی پریاس کر لیں ہم بھگوت گیتا نہیں سمجھ سکتے. تو پھر شیو جی نے پاروتی جی کو پہلے ادھیائے کا مہاتمیہ بتایا انہوں نے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ مہاتمیہ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا, یہ مہاتمیہ کے بارے میں لکشمی جی نے بھگوان سے پوچھا تھا, بھگوان وشنو سے پوچھا تھا اور انہوں نے اس کا اتر دیا, وہی میں آپ کو دہرا رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں, ہے نا. ना, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा आपको। तो उन्होंने बताया कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, वो हालांकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था लेकिन उसको कुछ भी ब्राह्मण के गुण नहीं थे, है ना। तो वो क्या करता था, कुछ पत्ते वत्ते इकट्ठे किए, दोने वगैरह बनाए, उसको बाजार में बेचता था वो, और जो पैसा मिलता था शराब पी ली, मांस खा लिया, उल्टे सीधे काम कर लिया उसने। ऐसे ही जीवन बिताए जा रहा था वो। तो एक बार वो पत्ते इकट्ठे करने गया जंगल में, तो एक सांप ने डस लिया उसको, मर गया। सांप के डसने पर वैसे ही जो व्यक्ति है उसको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, सांप के हाथों मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती, और ऊपर से पापी भी था। तो अनेक समय तक उसने कष्ट भोगे नरक में, और कष्ट भोगने के बाद एक बैल के रूप में उसका जन्म हो गया। सुनी हुई है? तो बैल के रूप में जन्म हो गया उसका। तो एक लंगड़ा कुबड़ा एक व्यक्ति था, वो उसके हत्थे चढ़ गया वो। तो बड़ी उससे मशक्कत करवाता था, बड़ा वजन उठवाता था, एक बार कुछ ज्यादा ही वजन उस पर लाद दिया, हाँ, और खींच रहा था, जल्दी करो जल्दी करो, और धड़ाम से नीचे गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, कौन नीचे गिर गया? बैल, याद रखना। सो धड़ाम से नीचे गिर गया, लोग इकट्ठे हो गए। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, बहुत तड़प रहा था वो सारा, एक तो थकान के मारे नीचे गिरा और ऊपर से सारा वजन भी उसी के ऊपर आके गिरा, और बहुत तड़प रहा था लेकिन प्राण नहीं छूट रहे थे उसके, है ना। सो एक बार मेरा एक मित्र था, कभी उसका फोन नहीं आया मेरे को। एक बार उसका फोन आया, उसने बोला, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने क्या हुआ? बोला कि मेरी जो मदर है बहुत बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया लेकिन शरीर नहीं छूट रहा, प्राण नहीं छूट रहे उनके। तो मैं उनके घर गया शाम को, ऑफिस उस समय मैं जॉब करता था, तो मैं गया, तो उनके घर में उसकी माता के सिरहाने बैठ के पूरी भगवद गीता पढ़ी वहाँ बैठ के, और पढ़ के मैं वापस घर आ गया अपने। सो अगले दिन सुबह उसकी माता ने शरीर छोड़ दिया, तो मुक्ति मुक्ति मिलने वाली बात है, है ना। सो ऐसा नहीं है, आप सब अपने सास ससुर के पास भगवद गीता बैठ के पढ़नी शुरू कर दो कि इसको मुक्ति मिले। आप ये नहीं कह रहे, ठीक है। तो एक व्यक्ति आया, भीड़ में खड़ा हुआ था, तो उसने कहा, मैं अपने फलाने पुण्य इसको दान देता हूं तो इसके प्राण छूट जाए। एक ने किया, सभी ने करना शुरू कर दिया। हाँ, तो जो भी भीड़ में लोग थे खड़े हुए, सभी ने ऐसा किया, तो उसके बैल की मृत्यु हो गई, है ना। मृत्यु हो गई तो यमराज के पास पहुंचा, वापस जाना पड़ता है ना यमराज के पास हर बार। जब भी शरीर छोड़ोगे, चाहे मनुष्य का हो चाहे कुत्ते बिल्ली का, यमराज जी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हर बार, याद रखना, ठीक है। तो यमराज जी के पास गया, पिछली बार तो नरक में फेंका था, अब देखो क्या करते हैं। हाँ, तो यमराज जी ने कहा, भाई बताओ इसका अकाउंट खोलो इसका। तो चित्रगुप्त ने बोला, सब साफ है, क्लियर हो गया सारा अकाउंट। तो यमराज जी भी हैरान, और वो जो बैल, उसका नाम क्या था? सुशर्मा। तो जितना इंटरेस्टिंग आपको ये लग रहा है, इतना इंटरेस्टिंग आपको जब भगवद गीता सुनाएंगे तो नहीं लगेगी। उसमें कई श्लोक बहुत ही मुश्किल है सुनने और समझने, है ना। सो यमराज ने कहा चलो भाई जाओ, तुम्हारा काम खत्म, अकाउंट तुम्हारा साफ हो गया। अरे कैसे हो गया साफ? तो उन्होंने बोला एक वैश्या ने अपने पुण्य तुम्हें दान कर दिए। हाँ, तो वैश्या के पुण्य जो थे उसके प्रभाव से तुम्हारे जो सारे पाप नष्ट हो गए। ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया उसने? तो उसका जन्म हुआ एक ब्राह्मण के रूप में, उसको अपने पुराने जन्म याद थे। उसको जिसको पुराने जन्म याद हो उसको जाति स्मर बोलते हैं। अभी भी कई बार इक्का दुक्का मिल जाते हैं ना, वो बोलते हैं हमें याद है, हमें वो याद है। अभी पीछे नेपाल के जो राजकुमार ने बोला, वो नालंदा की बात कर रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था। अभी पीछे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह ये सब जब अनपढ़ थे, उस समय पूरा हिंदुस्तान पढ़ा लिखा था, क्योंकि जगह जगह गुरुकुल खुले हुए थे, हर बच्चा जो है वहां पर जाकर शिक्षा लेता था, है ना। जैसे जैसे भौतिकता आई, हिंदुस्तान अनपढ़ हो गया, वो लोग पढ़ लिख गए। तो बोल रहे हैं देखो आदम खो रहे हैं, ये सारे अजीब से पिछड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल एकदम उलट गया सारा काम। जैसे ही गुरुकुल इत्यादि बंद हुए, वैसे ही हिंदुस्तान बिल्कुल नीचे गिर गया एकदम से, है ना। तो वो ब्राह्मण ने बोला कि मैं ढूंढता हूं वो वैश्या को जिसके कारण मैं यहां तक पहुंच सका। तो वैश्या को ढूंढा उसने, टाइम लगा उसको ढूंढ लिया। और आजकल नहीं ढूंढ सकता था, आजकल तो करोड़ों वैश्या है, पहले इक्का दुक्का होते थे, ढूंढ लिया उसने। तो वैश्या के पास गया, प्रणाम किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैं वो बैल था, आपने पुण्य दान किए थे, आप मुझे ये बताओ कि आपने मतलब ऐसा कौन सा पुण्य है, आप घृणित कार्य में लगी हुई हो फिर भी ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित कर लिया आपने कि मतलब मैं सारे पाप ही कट गए मेरे। तो उसने बोला मेरे पास एक तोता है, वो तोता मेरे को रोज सुनाता है एक घंटे तक, मुझे समझ कुछ नहीं आता लेकिन वो सुनाता है, उसको सुनने से मेरा हृदय निर्मल हो गया। तो वो तोते को सामने लेके आए, तो तोते से पूछा भाई तूने कहां से सीख ली? तो फिर वो भी अपने पिछले जन्म में गया, उसको हम काट देते हैं। तो तोते ने कहा कि मैं अपने कर्मों की वजह से, मैंने बहुत पाप कर्म किए, बहुत अहंकारी था मैं, ब्राह्मण था मैं पहले, हाँ, लेकिन अहंकारी था, तो एक तोते के रूप में मेरा जन्म हुआ। तो जन्म लेते ही मेरे माता पिता मर गए मेरे पापों के कारण, और मैं तड़प रहा था लेकिन कुछ साधुओं ने उठा लिया मेरे को, अपने आश्रम में ले गए। और वहां पे जो बच्चे थे उस गुरुकुल में, वो बच्चे भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ कर रहे थे, वो सीख रहे थे, तो बार बार वो दोहरा रहे थे। मैंने भी सुना कई बार, मुझे भी याद हो गया, मैंने भी साथ दोहराना शुरू कर दिया। फिर इन ये जो पवित्र स्त्री हैं, इनके पास मैं पहुंच गया संयोग से, मैंने यहाँ भी दोहराना जारी रखा, मेरा हृदय भी पवित्र हो चुका, निर्मल हो चुका, और ये जो स्त्री है इसका हृदय भी पवित्र हो गया। तो इतना महत्व है, इतना महात्म्य है भगवद गीता के पहले अध्याय का श्रवण करने का, पठन करने का, ठीक है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप प्लीज आप भगवद गीता पढ़ें। हम लोग कोशिश करेंगे हर हफ्ते 5 से 10 श्लोक लेने के लिए। कई बार हो सकता है एक ही श्लोक लें, कई बार 10-12 श्लोक भी लेंगे, ठीक है। तो आप सब अपने घर से पढ़ के आए भगवद गीता, भगवद गीता अपने साथ लेके आए, और अगर भगवद गीता पढ़ते समय आपके मन में कुछ डाउट्स आते हैं, आप उसको लिख के अपने पास संभाल के रखें, जब आप क्लास में आएंगे तो आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, है ना। इससे आपको भी फायदा होगा और आप आगे औरों को भी बता पाएंगे, ठीक है। तो हम भगवद गीता के पहला श्लोक आज हम पाठ करते हैं, 10 मिनट हम और लगाएंगे, 8:30 बजे हम उसको क्लोज कर देंगे। तो हम भगवद गीता के पहले श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, ये पेज नंबर 29 है, पेज नंबर 29 आप सब ने खोल लिया, तो आप सब मेरे पीछे दोहराइए। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजया। सो अभी आप इसका तात्पर्य सुनिए, आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आप सब इसका तात्पर्य है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं घर में, जो शिला प्रभुपाद ने लिखी है, बहुत ही विस्तार से लिखी है। तो यहाँ पर हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन हम 2-3 शब्दों के ऊपर बात करेंगे और फिर अगर आपके प्रश्न होंगे तो हम प्रश्नों को भी ले सकते हैं। सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है। तो भागवतम के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का एक नाम है तीर्थपाद, कि सारे तीर्थ स्थल भगवान के चरण कमलों में स्थित हैं। और दूसरा अर्थ भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जहाँ भी अपने चरण डालते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, है ना। नहीं तो द्वारका में क्या था, द्वारका बेकार सी जगह थी, हाँ, समुद्र के किनारे, लेकिन भगवान वहां पर रहे तो वो तीर्थ स्थान बन गया, है ना। भगवान ने वृंदावन में विहार किया, वो जगह तीर्थ स्थान बन गई। भगवान जहां भी चरण डालते हैं वो जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। और क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र में स्वयं उपस्थित थे, इसीलिए कुरुक्षेत्र जो है वो भी तीर्थ स्थान है। हालांकि कुरुक्षेत्र पहले से ही उसकी बड़ा महत्व है, पहले से ही वेदों में भी जो है इसका कुरुक्षेत्र का महत्व बताया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने वहां पर अपने चरण डाले थे, इसीलिए हम कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र मानते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर धृतराष्ट्र शब्द यूज कर रहे हैं, मामकः पाण्डवाश्चैव। हालांकि धृतराष्ट्र के नजरिए से अगर हम देखें तो कौरव और पांडव दोनों ही उसकी संतान है। जो छोटे भाई का जो संतान है वो भी अपनी संतान ही गिनी जाती है ना, भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन धृतराष्ट्र जो है उसने यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा, अपने इस वचन के द्वारा धृतराष्ट्र ने दिखाया कि उसके मन में भेदभाव था। उसने पहले ही बोल दिया, माम कहा पांडवाश्च, मेरे बच्चों ने और पांडवों ने क्या किया, है ना। तो ये जो उसने भेदभाव किया, ये भेदभाव ये कारण है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर से बहुत दूर था। ये संवाद हो रहा है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, है ना, जो कि हस्तिनापुर बैठे हुए थे। तो किस प्रकार से जो संजय, जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे, वो कैसे कुरुक्षेत्र का पूरा हाल देख के वर्णन कर सके, तो संजय जो है वो इस बात का वर्णन करते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में। और उन्होंने बोला है कि जो मेरे गुरु हैं व्यास देव, हाँ, उनकी कृपा से ये संभव हो सका, है ना। सो भगवद गीता अगर हमने समझनी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखनी है, हमें भगवान कृष्ण और पूरी गुरु परंपरा में श्रद्धा रखनी होगी। अगर हम केवल भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखें और बोले बाकी सब बेकार है, फिर भी समझ नहीं आएगी। भगवद गीता को समझने के लिए हम सबको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेंगे तब तक हम भगवद गीता को सही मायनों में नहीं समझ सकते, ठीक है। हम इसको